हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। हाँ दादी माँ, आपका मेरे दिल में एक ऐसी जगह है जो कोई नहीं ले सकता। मैं हमेशा आपको याद करूँगी। आप बहुत अच्छी हैं, याद आएंगी दादी माँ। ये बोलते हुए झलक काफी हद तक इमोशनल हो चुकी थी। वहीं दादी माँ झलक की ये बातें सुनकर पूरी तरह रो पड़ी और बोली, कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे, तुम्हारे आने से मेरी बुजुर्ग जिंदगी में एक नई रोशनी आई है और तुम मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे बेटा। प्लीज तुम ऐसी बातें मत बोलो। तुम मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? मैं तुम्हें अपने पास रखने के लिए न जाने क्या क्या सोचकर बैठी हूँ, और तुम हो कि मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही हो। ये कहते हुए दादी माँ की आंखें छलक उठीं। तब झलक ने उन्हें तसल्ली देने के लिए उनका हाथ पकड़कर बोली, सच में मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आपका प्यार मिला। लेकिन दादी माँ, वो मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे पाला है, वो भी उस वक्त जब मेरे सगे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया था। मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। भले ही मेरे पिता अब बीमारी से ठीक हो गए हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि अपनी जिंदगी चलाने के लिए वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती कि उन्हें छोड़कर यहाँ एक राजकुमारी जैसी जिंदगी जी लूं। मुझे इसकी आदत भी नहीं है दादी माँ। तब दादी माँ ने कहा, अगर तुम्हें अपने माँ बाप की ही चिंता है तो हम उन्हें भी यहीं बुला लेते हैं। वो भी हमारे साथ परिवार की तरह रह सकते हैं, तो फिर तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत है? झलक मुस्कुराई और बोली, दादी माँ, आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन वो लोग शुरू से गांव में रहे हैं। गांव का रहन सहन ही उन्हें सूट करता है। शहर की रोशनी उन्हें भा नहीं पाएगी, और वो स्वाभिमानी हैं। मैं वहीं जाकर उनकी सेवा करना चाहती हूँ। और एक बात और, जब भी आपका दिल करे आप मुझसे मिलने आ सकती हैं। हमारा रिश्ता सिर्फ इस मेंशन तक सीमित नहीं है, हमारा रिश्ता दिलों का है। जब चाहे आप मुझसे मिलने आ सकती हैं। इनफैक्ट, आप चाहें तो मेरे गांव में भी रह सकती हैं, लेकिन फिलहाल ये संभव नहीं है। हाँ, जैसे कि मैंने वादा किया था, मैं मिस्टर रणविजय से ज़रूर मिलूंगी, लेकिन अगर वो मुझे पसंद नहीं आए तो मैं आपको साफ साफ इनकार भी कर दूंगी दादी माँ, क्योंकि मैं आपको किसी गलत फहमी में नहीं रखना चाहती। झलक की साफ और सच्ची बातें सुनकर दादी माँ कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित हुईं। वो सोचने लगीं, अगर झलक की जगह कोई और लड़की होती तो इतने पावरफुल और रईस लड़के के लिए कभी इनकार न करती। रणविजय खुराना विदेश में अपनी एक अच्छी खासी पहचान बना चुका था, सिद्धार्थ जैसा ही हैंडसम और असरदार, लेकिन फिर भी झलक की आंखों में सच्चाई थी जो किसी और में नहीं दिखती थी। वो लड़की एकदम साफ दिल की थी, जिसने दौलत, शोहरत और परिवार की पहचान तक छोड़ने का साहस दिखाया। दादी माँ बेहद भावुक हो गईं। उन्होंने झलक के माथे को चूमा और कहा, मुझे पता था मेरे बच्चे, तो कभी किसी दौलत या शोहरत की लालच में नहीं पड़ेगी। तूने ये बात बोलकर साबित कर दिया। लेकिन एक बात और, रणविजय तुम्हें जरूर पसंद आएगा, क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम है, और हाँ, उसके कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। ये सुनकर झलक मुस्कुरा दी। दादी माँ जिस तरह से रणविजय की तारीफ कर रही थीं, झलक को वो बातें कुछ बचकानी सी लगीं। फिलहाल दादी माँ ने झलक के गालों को पकड़कर कहा, मैं तुमसे खुद को दूर जाने की इजाज़त तो कभी नहीं दूंगी, लेकिन हाँ, मैं समझती हूँ कि तुम्हारा परिवार तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम कुछ दिनों के लिए जा सकती हो, लेकिन वादा करो कि फिर वापस आओगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब दादी माँ का इतना स्नेह और प्यार देखकर झलक और ज्यादा भावुक हो गई। उसने दादी माँ को गले से लगा लिया। दादी माँ ने भी उसे अपने आंचल में छुपाकर भरपूर प्यार किया। वहीं अब सिद्धार्थ तुरंत ही वहां से बाहर आया। जैसे ही उसने देखा कि झलक दादी को गले से लगाए बैठी है, सिद्धार्थ की आंखों को एक सुकून सा महसूस हुआ और वो सोचने लगा कि इस लड़की ने कितने ही कम समय में दादी के दिल में कितना बड़ा मुकाम बना लिया है। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ की नज़रों में झलक केवल गांव से आई हुई एक गवार लड़की थी, जो खुराना परिवार की बहू बनने के लायक नहीं थी, और वो चाहकर भी झलक को वो मुकाम नहीं दे पा रहा था जिसकी वो हकदार थी। फिलहाल आकांक्षा, जो सिद्धार्थ के पीछे पीछे बाहर आई, उसने देखा कि दादी झलक को सीने से लगाए बैठी हैं और गुस्से से अपनी उंगलियां मसलते हुए सोचने लगी कि ये लड़की कितनी चालाक है, किस तरह से बुढ़िया को सिर्फ अपने इशारों में उतार लिया है। बस एक बार मेरी शादी हो जाए और मैं मेंशन में आ जाऊं, उसके बाद इस बुढ़िया को सही से समझाऊंगी। तभी सिद्धार्थ जैसे ही वहां आया, दादी ने उसे देख लिया और झलक से थोड़ा दूरी बनाकर बोली, झलक बेटा, आज तुम खुराना मेंशन में ही रुकोगे, ठीक है? वैसे भी कल रणविजय आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे सामने मिलो। एक बार फिर रणविजय का जिक्र सुनते ही सिद्धार्थ की आंखों के सामने कई सवाल उभर आए और वो पूरा गुस्से से भर गया। उसने खुद को रोकते हुए दादी के सामने खड़ा होकर कहा, दादी, आखिर आप उस रणविजय को यहाँ क्यों बुला रही हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। इसी तरह सिद्धार्थ ने वहां जाकर रणविजय के प्रति अपनी नफरत का इजहार किया। अब झलक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो पूरी तरह हैरान थीं और सोचने लगीं कि आखिर रणविजय की क्या कहानी है और ये मिस्टर खड़ूस खुराना उसे इतनी नफरत क्यों करता है। लेकिन अगर मिस्टर सिद्धार्थ खुराना रणविजय से नफरत करता है तो झलक तो उसे पसंद कर सकती है। ये सोचकर झलक के दिमाग में खुराफाती आइडिया आ चुका था सिद्धार्थ को पूरी तरह जलाने का और उसे सबक सिखाने का। झलक तुरंत दादी से बोली, दादी, कब आ रहे हैं रणविजय जी? मैं एक काम करती हूँ, आप मुझे बता दीजिए उन्हें किस तरह के कपड़े पसंद हैं, मैं वैसे ही कपड़े पहनूंगी, और उन्हें खाने में क्या क्या पसंद है तो मैं वैसा ही खाना उनके लिए बनाऊंगी। झलक की बातों में अचानक जोश आ गया और वो पूरे उत्साह से बातें करने लगी। ये सुनकर सिद्धार्थ और भी ज्यादा खिलस उठा। दादी थोड़ी खुश हुई कि कम से कम झलक में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया। दादी ने तुरंत बताना शुरू किया, रणविजय को ग्रीन कलर बहुत पसंद है, मैंने पहले ही ग्रीन कलर की एक प्यारी खूबसूरत साड़ी तुम्हारे कमरे में रख दी है। साड़ी की बात सुनकर झलक चौंक गई और बोली, दादी माँ, मुझे तो साड़ी पहनना नहीं आता, फिर आपने साड़ी मेरे लिए क्यों रखी? तब दादी ने तुरंत उसके गालों को छूते हुए कहा, फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें साड़ी पहनना सिखा दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम साड़ी पहनकर ही रणविजय से मिलो, क्योंकि वो काफी दिनों तक विदेश में रहा है और उसने वहाँ के मॉडर्न कपड़े देखे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे एकदम भारतीय नारी की तरह मिलो। ये सुनकर झलक मुस्कुराई और थोड़ा शर्माते हुए बोली, ठीक है दादी, जैसा आपका मन है वैसे ही करूंगी, रणविजय जी से मैं साड़ी में ही मिलूंगी। थोड़ा शर्माते हुए ये बोलकर उसने सिद्धार्थ की ओर देखा। सिद्धार्थ का चेहरा ऐसा था मानो किसी ने उसे गहरी खाई में धक्का दे दिया हो। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चली थीं और वो अपना गुस्सा काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था।
आकांक्षा, जो वहां खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी, मन ही मन बुदबुदाने लगी कि इस लड़की की किस्मत तो बहुत तेज निकली। वो तो सोच रही थी कि आज जैसे ही वो सिद्धार्थ के अपार्टमेंट में जाएगी उसे अगवा करवा देगी, पर आज तो उसने खुराना मेंशन में रुकने का फैसला किया है। ये सोचकर आकांक्षा गुस्से से बोली, भले ही आज तुम बच गई हो, लेकिन कल तुम्हें कौन बचाएगा? इस वक्त आकांक्षा अपना पूरा प्लान तैयार कर चुकी थी, क्योंकि वो अब जल्द से जल्द बस झलक को अपनी जिंदगी से बाहर निकालकर फेंकना चाह रही थी। दादी ने तुरंत सिद्धार्थ को देखकर बोला, अरे सिद्धार्थ, तुम्हें एक काम करना है, अगर तुम्हें अभी निकलना है तो तुम अभी निकल जाओ, या फिर अगर तुम आज खुराना मेंशन में रुकने वाले हो तो बता दो, क्योंकि मैं आज झलक की पसंद का सारा खाना बनवाऊंगी।